लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे अपने घरों का पलायन करने वाले आप प्रवासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो युद्ध अथवा भूख के कारणवश खतरों और हिंसा से भरी यात्राएं करने के लिए मजबूर होते हैं, ताकि मेजबान देशों में उन्हें स्वागत सत्कार और नए अवसर मिल सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओ, आज के प्रसारण विषय है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, हम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत अपने मंगलवारीय कार्यक्रम में संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र लाउदातो सी मेरे प्रभु तेरी स्तुति हो की चर्चा सुन रहे हैं। हमने लाउदातो सी के पांचवें अध्याय, दृष्टिकोण और कार्यवाही की दिशाएं की शुरुआत की है। इस संदर्भ में हमने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पर्यावरण पर वार्ता करते हुए कहा कि एक दूसरे पर आश्रित रहना हमें एक सामान्य परियोजना के साथ एक विश्व के बारे में विचार करने की आवश्यकता पर बल देता है। हमने रियो दे जेनेरियो में पृथ्वी पर हुए शिखर सम्मेलन का जिक्र किया, जो सन 1972 के स्टॉकहोम घोषणा को व्यक्त करते हुए विभिन्न मुद्दों जैसे कि ग्रीन हाउस गैस के घनत्व को कम करने का लक्ष्य, जिससे ग्लोबल वार्मिंग में परिवर्तन लाया जा सके, इसमें जैव विविधता पर एक सम्मेलन के साथ वनों की सुरक्षा के लिए सिद्धांतों का जिक्र है। लेकिन दुर्भाग्यवश कई अन्य कमियों के कारण इस समझौते का कार्यान्वयन उचित रूप में नहीं हो पाया। श्रोताओं, जहां तक जैव विविधता के संरक्षण और मरुस्थलीकरण से संबंधित मुद्दों का सवाल है, इसमें हम बहुत कम विकास को पाते हैं। जलवायु परिवर्तन के संबंध में खेद रूप से कहा जाए कि इसमें प्रगति बहुत ही कम हुई है। ग्रीन हाउस गैसों में उत्पन्न की कमी हमसे ईमानदारी, साहस और उत्तरदायित्व की मांग करती है, उससे भी बढ़कर उन देशों से और अधिक जो अधिक शक्तिशाली और अधिक प्रदूषित हैं। सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन रियो डी जेनेरो एक व्यापक लेकिन एक अप्रभावी परिणाम दस्तावेज जारी किया है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते अपने में कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देशों ने वैश्विक जन सामान्य की भलाई के ऊपर अपने राष्ट्रीय लाभों को महत्व दिया है। हम जिन चीजों को छुपा रहे हैं उनके परिणामों का भुक्त भोगी जिन्हें होना पड़ेगा, वे विवेक और जिम्मेदारी की असफलता को नहीं भूल पाएंगे, यहाँ तक कि जब इस विश्व पत्र को तैयार किया जा रहा था। इस मुद्दे पर वाद विवाद अपने में तीक्ष्ण चरण पर हुई थी। हम विश्वासी इन परिस्थितियों के संबंध में ईश्वर से एक सकारात्मक परिणाम की मांग करने हेतु असफल नहीं हो सकते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियों को गलत सुझाव के परिणाम का प्रभाव न झेलना पड़े। श्रोताओं, प्रदूषक गैस उत्सर्जन को कम करने की कुछ राजनीतियों में पर्यावरणीय लागतों के अंतर्राष्ट्रीयकरण की बात कही गई है, जिससे कम संसाधनों वाले देशों पर अधिक औद्योगिक देशों के बराबर उत्सर्जन कम करने की भारी प्रतिबद्धताएं थोपने की जोखिम पैदा हो जाएंगे। इस प्रकार के मापदंडों को लागू करना विकास की जरूरत में पड़े देशों को दंडित करने की भांति होना है। यहाँ हम पर्यावरण संरक्षण की आड़ में एक और अन्याय को होता पाते हैं। यहाँ भी गरीबों को शोषण का शिकार होना पड़ता है। इससे भी बढ़कर मौसम परिवर्तन का प्रभाव अपने में लंबे समय तक अनुभव किया जाएगा, चाहे इसके लिए अब कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। सीमित संसाधनों वाले कुछ देशों को पहले से उत्पन्न हो रहे प्रभावों के अनुकूलन में सहायता की आवश्यकता होगी, जो उनकी अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करेगा। इस संदर्भ में हम एक सामान्य और विभिन्न तरह के उत्तरदायित्वों को पाते हैं, जैसे कि बोलिविया के धर्माधर्शकों ने कहा है, उन देशों ने जो अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हुए उच्च स्तर के औद्योगिकीकरण से लाभ उठाया है, उनके ऊपर समस्याओं के समाधान की एक बड़ी जिम्मेदारी आती है। श्रोताओं, कार्बन क्रेडिट्स खरीदने और बेचने की राजनीति एक नए सट्टेबाजी की ओर अग्रसर करेगी, जिससे विश्व में हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को कम करने में सहायता नहीं मिलेगी। यह प्रणाली हमारे लिए एक शीघ्र समाधान को प्रस्तुत करती है, जहां हम पर्यावरण के संबंध में छुपी हुई एक निश्चित निष्ठा को पाते हैं, लेकिन यह किसी भी रूप में हमें मूलभूत परिवर्तन की ओर अग्रसर नहीं करेगा, जिसे वर्तमान को जरूरत है, बल्कि यह अपने में एक चाल बनती है जो कुछ देशों और क्षेत्रों की अत्यधिक खपत को बनाए रखने की अनुमति देता है। गरीब देशों के लिए सबसे महत्वपूर्ण विकल्प गरीबी का उन्मूलन और लोगों के सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है। वहीं उन्हें अपने में इस बात को स्वीकारने की जरूरत है कि कुछ विशेष अधिकार हैं जहां उपभोक्ता का स्तर अपने में अपमानजनक है, जिसकी रोकथाम हेतु उन्हें प्रभावकारी ढंग से कार्य करने की जरूरत है। इसी प्रकार वे ऊर्जा उत्पादन के कम प्रदूषणकारी रूपों को विकसित करने के लिए भी बाध्य हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें उन देशों की सहायता की आवश्यकता होगी जिन्होंने पृथ्वी के निरंतर प्रदूषण की कीमत पर अपने में वृहद विकास का अनुभव किया है। प्रचुर मात्रा में सौर ऊर्जा का लाभ उठाने के लिए तंत्र और सब्सिडी की स्थापना की आवश्यकता होगी जो विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, तकनीकी सहायता और वित्तीय संसाधनों तक पहुंच प्रदान करेगा, लेकिन एक तरह से जो उनकी ठोस स्थितियों का सम्मान करता है, क्योंकि जिस संदर्भ के लिए उन्हें बनाया गया है उनके साथ बुनियादी ढांचे की अनुकूलता का हमेशा पर्याप्त रूप से मूल्यांकन नहीं किया जाता है। जलवायु परिवर्तन के जोखिम की तुलना में इसकी लागत कम होगी। किसी भी स्थिति में ये मुख्य रूप से नैतिक निर्णय हैं जो सभी लोगों के बीच एकजुटता पर आधारित है। श्रोताओं, समझौताओं को लागू करने हेतु हमें अंतर्राष्ट्रीय दबाव की अति आवश्यकता है, क्योंकि स्थानीय अधिकारियों के द्वारा वे सदैव प्रभावकारी ढंग से लागू नहीं किए जाते हैं। राज्यों के बीच संबंधों में एक दूसरे की प्रभुत्व का सम्मान होना चाहिए, लेकिन साथ ही क्षेत्रीय आपदाओं को रोकने के लिए पारस्परिक रूप से सहमतिपूर्ण तरीके भी निर्धारित किए जाने चाहिए जो अंततः सभी को प्रभावित करेंगे। हमारे लिए वैश्विक विनियामक मापदंडों की आवश्यकता है ताकि दायित्वों को लागू किया जा सके और अस्वीकार्य कार्यों को रोका जा सके। उदाहरण के लिए, जब शक्तिशाली कंपनियां या देश अन्य देशों में दूषित अपशिष्ट या प्रदूषणकारी उद्योगों को डंप करते हैं, हम समुद्रों के प्रबंधन प्रणाली की भी चर्चा करें। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समझौते तो मौजूद हैं, लेकिन विखंडन तथा विनियमन, नियंत्रण और दंड के सख्त तंत्रों का अभाव इन प्रयासों को कमजोर कर देता है। आज हम अपशिष्ट पदार्थों से समुद्र में बढ़ते प्रदूषण को पाते हैं और हमारे लिए खुले समुद्रों की सुरक्षा विशेष चुनौती उत्पन्न करती है। वास्तव में हमारे लिए जरूरी यह है कि हम प्रभावकारी ढंग से तथाकथित वैश्विक कॉमन्स के एक समझौते पर आएं, जिसके द्वारा संपूर्ण श्रृंखला पर शासन प्रणालियों को लागू किया जा सकता है। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र लाउदातो सी मेरे प्रभु तेरी स्तुति हो पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
मन से टूटे मानव मेरे साये में आ जा रे, मां के लाडले मुन्ने सा प्रेम मिले मेरे। करना जुदा तो खुद को मुझसे घोर अंधेरे में भटक न जा करना जुदा
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने सभी विश्वासियों को प्रार्थना के वर्ष में ईश्वर में अपने विश्वास को मजबूत करने और प्रभु के साथ अपने प्रेम संबंध को मजबूत बनाए रखने हेतु पवित्र शास्त्र का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। आज संत पापा ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पवित्र शास्त्र हमारे पंगु विश्वास को ठीक करता है, उन अद्भुत चीजों का वर्णन करके जो परमेश्वर ने हमारे लिए की है और हमें मसीही जीवन का नया स्वाद चखाता है जो वास्तव में प्रभु के साथ एक प्रेम का संबंध है। और वाटिकन प्रेस कार्यालय ने मंगलवार 25 जून को संत पापा फ्रांसिस की सितंबर के अंत में लक्समबर्ग और बेल्जियम की प्रेरितिक यात्रा का लोगो और आदर्श वाक्य प्रकाशित किया। संत पापा 26 सितंबर को एक दिवसीय यात्रा के लिए लक्समबर्ग पहुंचेंगे। इस यात्रा के लोगो में संत पापा फ्रांसिस की एक शैलीगत छवि है जिसमें वे आशीर्वाद देते हुए हाथ उठाए हुए हैं और पृष्ठभूमि में नोटर डैम महागिरजाघर है। इस्तेमाल किए गए रंग पीला और सफेद वाटिकन सिटी राज्य के ध्वज के हैं, जबकि नीला रंग लक्समबर्ग कैथोलिक धर्म के इतिहास की गहराई से निहित माता मरियम की श्रद्धा का संकेत देता है। नीचे दाई ओर प्रेरितिक यात्रा का आदर्श वाक्य सेवा करना मसीह को संदर्भित करता है जो सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आए। इस प्रकार अपने गुरु के उदाहरण का अनुसरण करते हुए कलीसिया मानवता की सेवा करने के लिए बुलाई गई है। 26 सितंबर की शाम को संत पापा लक्समबर्ग से विदा लेंगे और अपनी प्रेरितिक यात्रा के दूसरे चरण के लिए बेल्जियम की यात्रा करेंगे जहां वे 3 शहरों का दौरा करेंगे। यात्रा के इस चरण के प्रतीक चिन्ह में बेल्जियम का एक शैलीगत मानचित्र दर्शाया गया है जिसके बीच में एक सड़क है जिस पर विभिन्न युगों और विभिन्न संस्कृतियों की अनेक आकृतियां चल रही हैं तथा संत पापा बीच में हैं। नीचे प्रेरितिक यात्रा का आदर्श वाक्य दिया गया है, आशा में यात्रा जो एक साथ चलने का आह्वान करता है उस पथ पर जो देश का इतिहास है लेकिन साथ ही सुसमाचार यीशु मसीह का मार्ग हमारी आशा भी है। 3 दिवसीय यात्रा समाप्त करके संत पापा रविवार 29 सितंबर को वापस वाटिकन लौटेंगे और 30 जून को पूरी कैथोलिक कलीसिया संत पापा का चैरिटी दिवस मनाती है। यह संत पापा को हर किसी के और भी करीब आने में मदद करने का एक अवसर है, खासकर उन लोगों के जो पीड़ित हैं। रविवार 30 जून को मनाया जाने वाला संत पापा का चैरिटी दिवस दुनिया भर के समुदायों को संत पेत्रुस के कोष में दान करने और इस प्रकार रोम के धर्माध्यक्ष के मिशन का समर्थन करने की संभावना का संकेत देता है। शांति का मिशन परोपकार का, उन लोगों से निकटता का जो स्वयं को कठिनाई में पाते हैं, एक दान जो विशेष दिन के साथ साथ वर्ष के किसी भी अन्य दिनों में भी दी जा सकती है। कोई भी संत पापा फ्रांसिस के विश्वव्यापी मिशन में सक्रिय रूप से सहयोग कर सकता है। उधर सागर रविवार के लिए एक संदेश में कार्डिनल माइकल चेरनी लिखते हैं कि नाविकों को समुद्र की असीम सुंदरता के साथ साथ उनके भौतिक आध्यात्मिक और सामाजिक अंधकार का भी अनुभव होता है। हर साल जुलाई के दूसरे रविवार को कैथोलिक कलीसिया सागर रविवार मनाती है और नाविकों के लिए प्रार्थना एवं वकालत करती है। इस साल के उत्सव से पहले समग्र मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए गठित परम धर्म पीठ विभाग के प्रमुख कार्डिनल माइकल चेरनी ने नाविकों के भूले हुए श्रम को दर्शाते हुए एक संदेश जारी किया। कार्डिनल चेरनी ने इस बात पर ध्यान देना शुरू किया कि शिपिंग उद्योग में शामिल सभी लोगों की कुल संख्या जहाजों के चालक दल से लेकर डॉक वर्कर्स, कोस्ट गार्ड से लेकर कस्टम एजेंट तक निश्चित रूप से कई लाखों में है। कार्डिनल चर्नी लिखते हैं कि इन श्रमिकों के छिपे हुए प्रयासों के माध्यम से ही हमारी कई दैनिक जरूरतें हम तक पहुंचती हैं। उन्हें अतीत की तरह आज भी समुद्र यात्रा के लिए महीनों और यहाँ तक कि सालों तक घर और जमीन से दूर रहना पड़ता है। नाविक और उनके परिवार दोनों ही एक दूसरे के जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों से चूक जाते हैं। इसके अलावा कई नाविक अन्याय, शोषण और असमानता के खतरे में हैं। इसके बाद कार्डिनल चेर्नी कैथोलिक कलीसिया के नाविक प्रेरिताई सेवा पर चर्चा करते हैं, जिसके माध्यम से स्वयं सेवक और पुरोहित शिपिंग उद्योग में लोगों की आध्यात्मिक सहायता प्रदान करते हैं और उनके अधिकारों की वकालत करते हैं। उधर रूस के दक्षिणी क्षेत्र दागेस्तान में संदिग्ध इस्लामी आतंकवादियों द्वारा किए गए उत्पात के बाद 3 दिनों का शोक शुरू हो गया है। इन आतंकवादियों ने 19 लोगों की हत्या कर दी, जिनमें से अधिकांश पुलिसकर्मी हैं। आतंकवादियों ने 2 शहरों में समन्वित हमलों में गिरजाघरों और सभास्थलों पर हमला किया था। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा में हमास के खिलाफ लड़ाई का तीव्र चरण समाप्त होने वाला है। इसराइली चैनल 14 टीवी पर एक स्थानीय साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि रफाह में जमीनी अभियान जल्द ही पूरा हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कोई तारीख नहीं बताई। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा, इसका मतलब यह नहीं है कि युद्ध समाप्त होने वाला है। कार्यवाही तब तक जारी रहेगी जब तक हमास को सत्ता से पूरी तरह से खदेड़ नहीं दिया जाता। लेबनान इसराइल सीमा पर बढ़ती गतिविधि के बारे में उन्होंने कहा कि उनकी सेना कई मोर्चों पर लड़ सकती है और ऐसा करने के लिए तैयार है। हिजबुल्लाह पिछले साल अक्टूबर से इसराइल में गोलीबारी और रॉकेट एवं ड्रोन दाग रहा है। नेतन्याहू ने कहा कि वह आंशिक समझौते के लिए तैयार हैं, जिससे गाजा में अभी भी बंद शेष इसराइली बंदियों की रिहाई सुनिश्चित हो सके। इस बीच सोमवार को इसराइल की सेना ने घोषणा की कि उसने गाजा पट्टी में हमास के एक वरिष्ठ हथियार विशेषज्ञ को मार गिराया है और वह रफाह शहर में अपना हमला जारी रखे हुए है। सेना ने कहा कि एक लड़ाकू विमान ने हमास के लिए हथियार खरीदने, विकसित करने और वितरित करने के प्रभारी मुहम्मद सलाह को निशाना बनाया। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।